गाथा में आप सुन रहे हैं एरोनिका पार्कर जोन्स की लिखी कहानी साजिशबाज औरत। लीजिए सुनिए कहानी का पहला भाग। एलिजाबेथ कोई काम अधूरा नहीं रहने देती थी। आज का काम कल पर छोड़ने के फेवर में तो बिल्कुल भी नहीं रहती थी। ऐसा नहीं था कि उसे कल के आने का भरोसा नहीं था। दरअसल वो बहुत होशियार किस्म की औरत थी, खास तौर से अपने दोस्तों से सीक्रेट मुलाकातें करने के मामले में तो हद दर्जे की होशियारी दिखाती थी। वो मिस्टर वॉल्टर की वाइफ थी। मिस्टर वॉल्टर बड़े कारोबारी थे। मिस्टर वॉल्टर को अगर ये पता चल जाता कि उनकी पत्नी गोपनीय तौर पर गैर मर्दों से रिश्ते रखती है, तो वो इस आधार पर बहुत आसानी से तलाक लेने के लिए अदालत का रास्ता अपना सकते थे। बीवी बेवफा हो तो अदालत फौरन तलाक देने पर राजी हो जाती है। ऐसी हालत में बीवी को अपने पति की जायदाद में से कुछ भी नहीं मिलता है, गुजारा भत्ते के भी लाले पड़ जाते हैं। पत्नी इन दोनों ही चीजों की उस हालत में हकदार होती है जब कसूर पति का हो और बीवी तलाक के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाए। एलिजाबेथ को मालूम था कि उसके पति के अपनी सेक्रेटरी हेजल से संबंध है, लेकिन वो इसका सबूत किस तरह हासिल करती? इसके अलावा उसे अपने पति से तलाक लेने की जरूरत भी क्या थी? उसका पति मिस्टर वॉल्टर अपनी सेक्रेटरी से इश्क में बंधा हुआ था, वहीं एलिजाबेथ उसकी सेक्रेटरी के पति से दोस्ती बढ़ा चुकी थी। इस तरह हिसाब बराबर हो जाता था। शादी के बाद से अब तक ये उसका चौथा इश्क था। एलिजाबेथ ने शादी से पहले भी कई इश्क किए थे। उसके पति को इसका थोड़ा बहुत अंदाजा था, लेकिन सुहाग रात को उसके पति ने उसे माफ कर दिया था। शादी के बाद वो एक अरसे तक सिर्फ पति की वफादार बनी रही। फिर मिस्टर वॉल्टर की व्यस्तता, अपने पुराने शौक और जिंदगी में नए रंग भरने के लिए जल्द ही वो अपने पति से उकता गई। एक बार शुरुआत हुई तो फिर सिलसिला बढ़ता ही रहा। कुछ दिन बाद ही उसे अपने पहले बॉयफ्रेंड से ऊब होने लगी, फिर दूसरे से खिन्न हो गई, फिर तीसरे से और अब चौथे बॉयफ्रेंड रेमंड से भी उकता गई थी। रेमंड से उसकी मुलाकात 4 महीने पहले हुई थी। उन दिनों उसका कोई दोस्त नहीं था। वो कटी हुई पतंग की तरह इधर उधर डोलती फिर रही थी। एक दिन रेमंड ने उसे फोन किया।
मेरा नाम रेमंड है मैडम, मैं आपके पति की सेक्रेटरी हेजल का पति हूँ। क्या कल आपके पति अपनी सेक्रेटरी यानी कि मेरी पत्नी के साथ शहर के बाहर गए हैं?
जी हाँ, शिकागो गए हैं कारोबार के सिलसिले में, एलिजाबेथ ने जवाब दिया।
कारोबारी सिलसिला, रेमंड ने कहा। मिसेस वॉल्टर, मैं दरअसल इसी सिलसिले में आपसे मिलना चाहता हूँ। मैं आपको बताऊंगा कि इस कारोबारी सिलसिले में क्या राज छुपा है। क्या आप मुझसे मुलाकात करना पसंद करेंगी?
एलिजाबेथ के लिए यह खबर बहुत दिलचस्प थी। वो कभी अपने पति की सेक्रेटरी से नहीं मिली थी। अलबत्ता वॉल्टर अपनी आदत के मुताबिक अपनी सेक्रेटरी का जिक्र करता रहता था कि वो बहुत होशियार, काबिल और मेहनती है। अब हेजल के पति की जुबानी यह खबर सुनकर एलिजाबेथ को हेजल की काबिलियत पर शक होने लगा था। हेजल को टाइप करना भी आता है या नहीं? वो हेजल के बारे में कुछ और भी जानना चाहती थी। उसने हेजल के पति को फौरन ही अपने घर आने की दावत दे दी। आधे घंटे के बाद ही रेमंड उसके घर में मौजूद था।
आह, मिसेस वॉल्टर,
रेमंड ने हैरत से कहा,
आप अपनी तस्वीरों से कहीं ज्यादा खूबसूरत हैं। मैंने कल अखबार में आपकी वो फोटो देखी थी जिसमें आप चैरिटी के एक प्रोग्राम में अध्यक्षता कर रही थी।
एलिजाबेथ अक्सर चैरिटी और वैरायटी प्रोग्रामों की अध्यक्षता करती रहती थी। वो खुद भी चैरिटी में काफी पैसे देती थी। वॉल्टर ने कभी उसे इस काम के लिए रोका नहीं था। उसे खुद इन कामों के लिए फुर्सत नहीं मिलती थी, इसलिए वो अपनी पत्नी का शुक्रगुजार था कि वो उसकी तरफ से खुद सामाजिक कामों में हिस्सा लेती है। एलिजाबेथ की तस्वीरें अक्सर अखबार और मैगजीन्स में छपती रहती थी। वॉल्टर से शादी के बाद उसे समाज में एक ऊंचा मुकाम मिल गया था। यही वजह थी कि वो कभी वॉल्टर से तलाक लेने के बारे में सोचती भी नहीं थी। जब रेमंड ने उसे फोन पर यह बताया था कि वॉल्टर अपनी सेक्रेटरी से इश्क लड़ा रहा है, उस वक्त भी एलिजाबेथ के मन में वॉल्टर से तलाक लेने का ख्याल नहीं आया था। आखिर वो वॉल्टर से तलाक लेकर समाज में मिल रही इज्जत और ऐशोआराम की जिंदगी को क्यों ठोकर मारे? रहा पति की बेवफाई का मामला, तो वो कब खुद अपने पति के प्रति वफादार थी? उसने रेमंड को अपने घर आने की इजाजत सिर्फ इसलिए दी थी कि औरतों में जिज्ञासा ज्यादा रहती है, और आखिरकार वो भी एक औरत ही थी। रेमंड हेजल और वॉल्टर के रिश्तों के बारे में ज्यादा नहीं बता सका, लेकिन उसी दिन से वो एलिजाबेथ का बॉयफ्रेंड जरूर बन गया। बाद में एलिजाबेथ को शक हुआ कि कहीं रेमंड ने ये कहानी सिर्फ इसलिए तो नहीं गढ़ी है कि उससे मिल सके। बाद में उसने अपने दिलो दिमाग से इस ख्याल को निकाल फेंका। रेमंड जल्द ही उसका उपासक बन गया। शायद इसीलिए एलिजाबेथ ने अपने पति और उसकी सेक्रेटरी के बीच गैर कारोबारी ताल्लुकात के बारे में खास ख्याल नहीं किया। एलिजाबेथ ने दूसरे दिन अपनी एक नौकरानी को निकाल दिया। दरअसल उसने रेमंड को उसके घर पर आता हुआ देख लिया था। वो किसी भी वक्त वॉल्टर से इस बात का जिक्र कर सकती थी। वैसे भी वो नौकरानी निकम्मी थी। एलिजाबेथ उसके काम काज से बहुत संतुष्ट भी नहीं थी। खुद वो नौकरानी भी एलिजाबेथ से बहुत खुश नहीं रहती थी। इससे पहले भी एलिजाबेथ कई नौकरानियों को निकाल चुकी थी। उसके पति की नजर में नौकरानियों को निकालना और रखना उसका शौक बन चुका था। वो कभी इन मामलात में दखल नहीं देता था। सिर्फ 4 महीनों में ही उसका दिल रेमंड से उकता गया, लेकिन रेमंड तो उससे जोंक की तरह चिपक कर रह गया था। एक दिन बाथ टब में गर्म पानी में बैठे हुए एलिजाबेथ सोच रही थी कि अब उसे अपने इस चौथे बॉयफ्रेंड से भी छुटकारा ले लेना चाहिए। जब वो मुलायम तौलिए से अपनी नर्म और खूबसूरत स्किन पोंछ रही थी, तो उसने फैसला किया कि वो आज ही रेमंड से छुटकारा हासिल कर लेगी। रेमंड को उसकी कड़वी बातें मीठी गोलियों की तरह निगलनी पड़ेंगी। वो रेमंड को आज ही साफ साफ बता देगी कि वो अब उससे उकता चुकी है और रेमंड आइंदा कभी उससे मिलने की कोशिश न करे। रेमंड से वो इस वजह से भी निजात हासिल करना चाहती थी क्योंकि वो उसके प्रति कुछ ज्यादा ही निष्ठावान हो गया था। वो बड़ी ही संजीदगी से अपनी पत्नी हेजल से तलाक के बल लेने के बारे में सोच रहा था। इसके साथ ही वो एलिजाबेथ को मजबूर कर रहा था कि वो उससे शादी कर ले। जाहिर सी बात है, एलिजाबेथ इतनी बेवकूफ नहीं थी कि वो वॉल्टर से तलाक लेकर इस कंगाल आदमी से शादी कर ले। वो रेमंड की खातिर अपनी ऐश भरी जिंदगी नहीं छोड़ सकती थी। वो बेवकूफ इतना दीवाना हो गया था कि एक हफ्ते से अपने घर भी नहीं गया था। रेमंड ने हेजल से अलगाव कर लिया था। वो उस कमरे में रह रहा था जो उसने एलिजाबेथ से छुपकर मिलने के लिए एक घटिया सी बिल्डिंग में किराए पर ले रखा था। एलिजाबेथ बेवकूफ नहीं थी। उसने अपने नाम से होटल बुक कराने के बजाय रेमंड से कहा था कि वो ही अपने नाम से कमरा किराए पर ले ले। कमरे का किराया एलिजाबेथ ही दे रही थी। वो खुद अपने हाथ से किराया कभी नहीं देती थी। वो रेमंड से बहुत एहतियात के साथ मिलने के लिए जाया करती। ऐसे मामलों का उसे बहुत तजुर्बा था। ये सब एहतियात उसने महज इसलिए कर रखी थी कि अगर कभी उसके पति को उसकी बेवफाई का पता चल भी जाए तो वो उसके खिलाफ कोई सबूत हासिल न कर सके। रात का अंधेरा और भरी दोपहरिया ऐसी मुलाकातों के लिए बेहतरीन वक्त थे। दोपहर के वक्त आमतौर पर मर्द ऑफिस में रहते हैं। उसने जिस बिल्डिंग में कमरा किराए पर दिया था, वहां निचले तबके के युवा रहते थे। वो सुबह होते ही अपने काम पर चले जाते थे। इस तरह से दिन में बिल्डिंग पूरी तरह खाली रहती थी। एलिजाबेथ ने कपड़े बदलते वक्त फैसला किया कि वो इसी वक्त रेमंड से मिलकर उससे रिश्ता खत्म करने के बारे में बात करेगी। रेमंड तकरीबन हर वक्त किराए के उसी कमरे में पड़ा रहता था।
एलिजाबेथ, एलिजाबेथ,
उसे अचानक अपने पति की आवाज सुनाई दी। उसे बड़ी हैरत हुई, वॉल्टर दोपहर के वक्त घर क्यों लौट आया? फिर आगे क्या होता है इस कहानी में, ये सुनिए अगले भाग में। सुनते रहिए गाथा रूह वही रूप नया। गाथा में आप सुन रहे थे एरोनिका पार्कर जोन्स की लिखी कहानी साजिशबाज औरत। आपने सुना इस कहानी का पहला भाग। कहानी का संपादन कुमार रहमान का। गाथा में इस कहानी को आपके लिए प्रस्तुत किया शिफाली कपूर ने।